بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم پوتر قرآن مجید کی تلاوت ایوم انواد سے کریں گے۔ آج آپ قرآن مجید کے سورہ اسراء کی 13، 14، 15 اور 16 آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں شری رفیع۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدبيرا، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ہر منوش کا کرم پتر ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور پرلے کے دن اسے ایک کھلی ہوئی کتاب کی بھانتی پرستت کریں گے کہ اب اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج تمہارے حساب کے لیے تم ہی کافی ہو۔ जो कोई मार्गदर्शन प्राप्त करता है वो अपने लाभ के लिए करता है, और जो पथ भ्रष्ट हो जाता है वो भी अपना ही नुकसान करता है, और कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है। और हम लोगों को उस समय तक दंड नहीं देते जब तक उनके बीच कोई रसूल न भेज दें, और जब हम किसी बस्ती को विनष्ट करने का इरादा कर लेते हैं तो वहाँ के सुख भोगी लोगों को आदेश देते हैं, जब वे उसकी अवज्ञा करते हैं तो हमारी बात सिद्ध हो जाती है, फिर हम उसे बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकते हैं।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir, और हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। दोस्तों, आज शुक्रवार है, दे माह की 23, जमादिस्तानी की 20 और जनवरी की 13 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के उपरांत आप अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनेंगे पत्र संसार, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा विज्ञान की डगर। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा, और अभी आप कुछ क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान का कहना है कि वो लेबनान का हमेशा वफादार दोस्त रहेगा। ईरान ने कहा है कि अमरीका की गैर कानूनी कार्रवाइयां संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के खिलाफ हैं। हमास ने तुर्की और अजरबैजान गणराज्य की निंदा की है। भारत में मंदिर में घुसने पर दलित युवा की पूरी रात पिटाई। और अब आप विस्तार से अख्तर अब्बास से समाचार सुनिए। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहयान ने एक वेबिनार दक्षिण की आवाज को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में दुनिया जटिल और बहुस्तरीय संकटों से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि दुनिया को कोविड 19 महामारी की वापसी, सशस्त्र संघर्ष सशस्त्र संघर्षों, युद्ध, आतंकवाद, भुखमरी और असमानता जैसी जटिल समस्याओं का सामना है। अमीर अब्दुल्लाहयान का कहना था कि कुछ विश्व शक्तियां इन समस्याओं और संकटों का समाधान निकालने के बजाय सिर्फ अपने हितों को साधने में लगी हुई हैं, और दूसरे देशों पर अत्याचारपूर्ण प्रतिबंधों द्वारा बहुपक्षीयवाद का विरोध कर रही हैं। विश्व शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत बनाने पर बल देते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने G20 के साथ सहयोग के लिए इस्लामी गणतंत्र ईरान की तत्परता की घोषणा की। भारत की मेजबानी में आयोजित होने वाले इस वेबिनार में आर्मेनिया, ओमान, मालदीव, मनामा, जमैका, केन्या, एल सेल्वाडोर, जॉर्जिया, युगांडा, ट्यूनिशिया के विदेश मंत्रियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि ईरान हमेशा ही लेबनान का वफादार दोस्त रहेगा। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहयान ने बैरूत की अपनी यात्रा के दौरान शुक्रवार को लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अबू हबीब से मुलाकात की, और द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी। विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान लेबनान के ईंधन की आपूर्ति पर प्रतिबद्ध था, और लेबनान सरकार के समर्थन से इस देश के ऊर्जा, बिजली घरों के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए तैयार है। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहयान का कहना था कि ईरान इसराइल के मुकाबले में लेबनान और फिलिस्तीन के प्रतिरोध का समर्थक है, और साथ ही लेबनान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का खंडन करता है, और लेबनान के सारे राजनीतिक दलों के बीच वार्ता और समन्वय का समर्थन करता है। उनका कहना था कि लेबनान के लिए ईरान की मदद के बारे में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि विदेशी रुकावटें और दबाव भी पाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के स्थायी राजदूत अमीर सईद रोहानी ने कहा कि दुनिया के आजाद देशों के विरुद्ध अमरीका की अकारण और गैर कानूनी कार्रवाइयां कानून की सत्ता को कमजोर करने के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के भी विपरीत है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इस्लामी गणतंत्र ईरान के राजदूत ने गुरुवार को सुरक्षा परिषद की बैठक में, जिसका शीर्षक अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की हिफाजत के लिए कानून के प्रभुत्व की मजबूती था, कहा कि इस्लामी गणराज्य ईरान जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वाधीन देशों के खिलाफ अमरीका की मनमानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून के प्रभुत्व को कमजोर करने और संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर प्रहार के अर्थ में है। ईरान के राजदूत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र सभी सदस्यों को सिद्धांतों पर प्रतिबद्ध बनाता है कि वो शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए कानून का सम्मान करें। 41 वर्षीय एक फिलिस्तीनी व्यक्ति को इसराइली सैनिकों ने उस वक्त गोली मार दी जब वो अपने बेटे की गैर कानूनी गिरफ्तारी का विरोध कर रहा था। इस तरह वेस्ट बैंक में पिछले 24 घंटे के दौरान इसराइली सैनिकों ने 5 फिलिस्तीनी नागरिकों को शहीद कर दिया। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि गुरुवार को अवैध कब्जे वाले पूर्वी बैतुल मुकद्दस के निकट स्थित कलंदिया रिफ्यूजी कैंप में 41 वर्षीय आवानी हरबी असलान ने उस वक्त गोली मारकर शहीद कर दिया जब वो अपने बेटे की गिरफ्तारी का विरोध कर रहा था। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक असलान से पिछले 24 घंटे के दौरान इसराइली सैनिकों ने चार अन्य फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। गुरुवार को इसराइली सैनिकों ने एक अन्य फिलिस्तीनी युवक हबीब अबू कुमैल को भी गोली मारकर शहीद कर दिया था। फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध संगठन हमास ने अवैध कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इसराइली सैनिकों के हाथों फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्याओं पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए ज़ायनी शासन को चेतावनी दी है। गौरतलब है कि बुधवार और गुरुवार को 24 घंटे के दौरान इसराइली सैनिकों ने अलग अलग हमलों में कम से कम 5 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया। शुक्रवार को हमास के प्रवक्ता हाजिम कासिम ने इसराइली सेना के इन हमलों को आतंकवाद बताया और कहा कि ज़ायनी आतंकवाद फिलिस्तीनी राष्ट्र के हौसलों को कमजोर नहीं कर सकता। कासिम का कहना था कि ये कितने शर्म की बात है कि ऐसे वक्त में जब ज़ायनी सैनिक आए दिन फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार रहे हैं, कुछ अरब देश इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की साजिश रच रहे हैं। फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास ने अजरबैजान और तुर्किया की ओर से इसराइल के साथ राजदूतों के आदान प्रदान की निंदा की है। हमास के प्रवक्ता हाजिम कासिम ने अजरबैजान गणराज्य और तुर्किया की ओर से इसराइल के साथ संबंधों की बहाली और राजदूतों की तैनाती की निंदा करते हुए कहा कि ये अतिक्रमणकारी ज़ायनी शासन ने हमारे राष्ट्र के विरुद्ध अत्याचारों में वृद्धि कर दी है, जबकि इसराइल और क्षेत्रीय देशों के बीच संबंधों की बहाली और राजदूतों की तैनाती एक निंदनीय कृत्य है। गुरुवार को अजरबैजान के राष्ट्रपति ने इसराइल में अपने पहले राजदूत की तैनाती का ऐलान किया, जबकि तुर्किया के राष्ट्रपति ने भी दो दिन पहले अपने कूटनीतिक तुर्किया के राजदूत ने भी दो दिन पहले अपने कूटनीतिक दस्तावेज तेल अवीव शासन के हवाले किए थे। ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। तुर्किया के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान के विदेश मंत्री अगले सप्ताह तुर्किया का दौरा करेंगे। अल मोनिटोर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार तुर्क विदेश मंत्री का ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात की घोषणा ऐसे समय में आया है कि जब मॉस्को तुर्किया सूर्या और रूसी विदेश मंत्री की संयुक्त मुलाकात का प्रयास कर रहा है। तुर्किया के विदेश मंत्री चाउश ओग्लू ने रुवांडा में अपने दौरे के दौरान कहा कि मंगलवार को ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात करेंगे और संभव है कि ईरानी राष्ट्रपति भी आने वाले दिनों में तुर्किया का दौरा करें। अल मोनिटोर की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और ईरान सीरिया में सशस्त्र गुटों के मुकाबले के लिए सीरिया का समर्थन करते हैं और अंकारा को सीरियाई सरकार से राजनीतिक वार्ता पर बल देते हैं। भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का 75 साल की उम्र में गुड़गांव के फोर्टिस मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में गुरुवार की रात निधन हो गया। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार की रात 9 से 10 बजे के बीच उनका निधन हो गया। भारत के राष्ट्र कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई अन्य नेताओं ने शरद यादव के निधन पर शोक जताया है। शरद यादव इन दिनों लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी समाजवादी राजनीति में उनके योगदान को याद किया। लालू प्रसाद यादव ने सिंगापुर के अस्पताल से वीडियो मैसेज के जरिए शरद यादव को श्रद्धांजलि दी है। भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के मोरी क्षेत्र के सालरा गांव में एक दलित युवक जब पूजा करने के लिए मंदिर में दाखिल हुआ तो लोगों के एक समूह ने जलती लकड़ियों से उस पर कथित तौर पर हमला किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना 9 जनवरी की है, जब बनौल गांव निवासी 22 वर्षीय आयुष मंदिर गए। पीड़ित द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार रात भर उच्च वर्ग के लोगों ने मंदिर में उनके साथ मारपीट की, उन्हें बांध दिया और जलती लकड़ियों से उनकी पिटाई की। अधिकारियों ने कहा कि आयुष को 10 जनवरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उन्हें बेहतर इलाज के लिए उच्चतर स्वास्थ्य केंद्र स्थानांतरित कर दिया गया। भारत की केंद्र सरकार ने अमरीकी व्यवसायी दर्शन सिंह धालीवाल को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से नवाजा है। ये वही धारीवाल हैं जिनको किसान आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा लंगर चलाने की वजह से अक्टूबर 2021 में दिल्ली हवाई अड्डे से निर्वासित कर दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें संस्करण के दौरान धालीवाल को पुरस्कार प्रदान किया। विस्कॉन्सिन के मिलवेकी में रहने वाले धालीवाल भारतीय मूल के अमरीकी नागरिक हैं। उन्हें व्यवसाय और सामुदायिक कल्याण में उनके योगदान के लिए पहचाना जाता है। दिसंबर 2021 में दिल्ली में धर्म संसद में हेट स्पीच केस पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख सामने आया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की निंदा की है। केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणियां की हैं। दिल्ली में धर्म संसद में हेड स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर कई बड़े सवाल किए। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि धर्म संसद 19 दिसंबर 2021 को हुई थी तो इसकी 5 महीने बाद FIR दर्ज क्यों की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के प्रतिनिधि ने अपने संबोधन में कहा है कि अमरीका का अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बनने का रवैया और दूसरे हितों को नजरअंदाज करना यूक्रेन संकट का मुख्य वजह है। रूसी विदेश मंत्रालय के एक सीनियर अफसर ने कहा है कि यूक्रेन को अगर वार्ता शुरू करनी है तो उसे रूस में शामिल किए गए 4 इलाकों के विषय पर ध्यान देना होगा। रूसी अधिकारी एलेंस्की पोशिच कोच ने शुक्रवार को बताया कि जब यूक्रेन ने वार्ता रोकी थी उसके बाद से अब तक स्थिति काफी हद तक बदल चुकी है। रूस में नए इलाकों का विलय हो चुका है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति काल में अपने सहयोगियों को उत्तर कोरिया पर परमाणु हमले की सलाह दी थी। उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिका के साथ अपने मतभेद दूर करने के लिए 2018 में सिंगापुर और वियतनाम में 2 बार ट्रंप से मुलाकात की थी। हालांकि दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात परिणामहीन रही, लेकिन वाशिंगटन ने प्योंगयांग पर आर्थिक दबाव में वृद्धि कर दी थी। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओं, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में हम बात करेंगे پیغمبر اسلام کی سپوتری حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شبھ جنم دیوس پر عراق کے پوتر نگر نجف میں چھائے سما کے بارے میں کارکرم راجنیتک چرچا میں ہم امریکہ کی من مانیوں سے انتراشٹری قانونوں اور سنیکت راشٹر سنگھ کے گھوشنا پتر کے ہونے والے الگھن پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ بھارت نینترت کشمیر کے پورو مکھیہ منتری عمر عبداللہ نے کشمیر کے بارے میں کیندر سرکار کی نیتوں کی آلوچنا کی ہے، یہ وشے بھی راجنیتک چرچا میں شامل رہے گا۔ تو چرچا کے وشے یہی ہیں، آرمبھ کرتے ہیں عراق کے پوتر نگر نجف کے سما سے۔ پیغمبر اسلام کی سپتری حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شبھ جنم دیوس پر پوتر نگر نجف میں بالکل انوکھا سما دیکھنے کو ملا۔ نجف سے جلال خالدی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اختر عباس۔
سلام العطور والوان وزار،
پوتر شہر نجف کا سما کل بالکل نرالا تھا۔
استھانیہ
مہیلا پھول لے کر حضرت علی علیہ السلام کے روزے پر پہنچی، انہوں نے اس شبھ جنم دن کی مبارکباد پیش کی۔ حضرت علی کے حرم سے تھوڑی دور اور رسول روڈ کے آخری سرے پر امام خمینی کا وہ گھر ہے جہاں نجف پرواز کے سمے وہ رہتے تھے۔ امام خمینی کے اس گھر میں ایک محفل رکھی گئی تھی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا جنم دن یعنی 20 جمادی الثانی امام خمینی کا بھی جنم دن ہے۔ اسی اپلکش میں امام خمینی کی آواز میں درجنوں کی سنکھیا میں دھارمک اور راجنیتک ہستیاں پہنچیں تاکہ اس گھر میں پہنچ کر جس کی در و دیوار امام خمینی سے جڑی بے شمار یادوں کی گواہ ہیں، امام خمینی کے لکش اور مارگ کے پرتی اپنی وفاداری کا اظہار کریں۔
13 سال تمام امام در این منزل اجاره نشین بوده۔
ایک دھرم گرو بتاتے ہیں کہ اس گھر میں پورے 13 سال امام خمینی کرایہ دار کی حیثیت سے رہے، یہ شردھالو کے لیے زیارت گاہ بن گیا ہے۔ اس معمولی سے گھر میں رہتے ہوئے امام خمینی پورے ایران کو بدل دینے والے آندولن کا نیتتو کرتے تھے۔
خدایا تو را سپاس کہ در دوران زندگیمون عهد امام خمینی و امام خامنه‌ای را درک کردیم۔
ایران کے ورشٹھ کوٹ نائک نے کہا کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا جیون امام خمینی اور امام خامنائی کے دور میں گزر رہا ہے، ہمیں اس دور میں سوادھینتا، آزادی، ترقی سب کچھ دیکھنے کو ملا، ہمارے دیش کی پرتشٹھا پوری دنیا میں بڑھی۔ پوتر نگر نجف سے IRIB کے لیے جلال خالدی کی رپورٹ۔
سنیکت راشٹر سنگھ میں اسلامی گڑتندر ایران کے راجدوت نے ایک مہتوپورن مدعا اٹھاتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی من مانیوں کی وجہ سے انتراشٹری قانونوں اور سنیکت راشٹر سنگھ کے گھوشنا پتر کا لگاتار الگھن ہو رہا ہے۔ جائزہ پیش کر رہے ہیں سید میسم۔
سنیکت راشٹر سنگھ میں ایران کے راجدوت نے گروار کو سرکشا پریشد کی بیٹھک میں، جس کا شیرشک انتراشٹری شانتی و سرکشا کی حفاظت کے لیے قانون کے پربھتو کی مضبوطی تھا، کہا کہ ایران جیسے سنیکت راشٹر سنگھ کے سوادھین دیشوں کے خلاف امریکہ کی منمانی انتراشٹری استر پر قانون کے پربھتو کو کمزور کرنے اور سنیکت راشٹر سنگھ کے گھوشنا پتر پر پرہار کرنے کے ارتھ میں ہے۔ ایران کے راجدوت نے آگے کہا کہ سنیکت راشٹر سنگھ کے کچھ سدسیہ دیشوں وشیش روپ سے امریکہ کی طرف سے لگاتار سنیکت راشٹر سنگھ کی شکتی اور ادھیکاروں کا درپیوگ کیا جا رہا ہے اور اس سنستھا کو سوادھین دیشوں پر دباؤ ڈالنے اور غیر قانونی راجنیتک لکشے حاصل کرنے کے لیے ہتھیار کے روپ میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی نیتیوں کے آلوچک دیش شروع سے امریکہ کی منمانی پر اعتراض کرتے آ رہے ہیں۔ یہ منمانی سنیکت راشٹر سنگھ کے گھوشنا پتر اور انتراشٹری استر پر قانون کے پربھتو کے لیے خطرہ سمجھی جاتی ہے. اسی طرح اس سے انتراشٹری اشانتی و سرکشا کے کھیتر میں آپسی سہیوگ کے راستے میں رکاوٹ بھی پیدا ہو رہی ہے. پچھلے دو دشکوں کے دوران امریکہ نے اپنی اسی منمانی کو جاری رکھتے ہوئے عراق پر حملہ کیا, افغانستان پر سینک چڑھائی کی اور سیریا میں آتنکوادی سنگھنوں کا سمرتھن کر کے وہاں کی قانونی سرکار کو گرانے کے لیے ہیڑی چوٹی کا زور لگا دیا. جبکہ یہ ساری حرکتیں پشچمی ایشیا میں اشانتی و استھرتا پھیلانے اور آتنکواد کے پنپنے کا کارن بنی. امریکہ کی یہ جنگیں ویسٹ ایشیا میں لاکھوں انسانوں کی جان لے چکی ہیں, جبکہ داعش جیسے آتنکوادی سنگھنوں کو امریکہ کی طرف سے ملنے والی مدد کے نتیجے میں سیریا اور عراق میں بڑے بھیانک اپرادھ دیکھنے میں آئے, جبکہ اب یہ سنکٹ افغانستان کو بھی اپنی چپیٹ میں لے چکا ہے. واشنگٹن نے ہمیشہ ہی اور خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے کاریکال میں ایک پکشی رویہ اور منمانی کو خوب بڑھاوا دیا. اس دور میں امریکہ چین کے خلاف راجنیتک و ویاپاری ٹکراؤ میں ویست رہا, ساتھ ہی اس نے اپنے گھٹک یورپی دیشوں کو بھی نشانہ بنایا. اس کا ادھارن یوکرین جنگ کے بہانے روس کے خلاف امریکہ کی کارروائیوں میں دیکھا جا سکتا ہے. یہاں امریکہ کی منمانی کے روپ میں اس کی ایک پکشیہ پابندیوں کا نام لیا جا سکتا ہے. اس سمے امریکہ دنیا کا سب سے بڑا پرتیبند لگانے والا دیش بن چکا ہے. امریکہ ویسے تو راجنیتک ویاپارک سرکشا یہاں تک کی مانوادھیکار جیسے بہانے پیش کر کے اپنے پرتیدوندی دیشوں پر پابندیاں لگاتا ہے, مگر اس کا اصلی لکشیہ امریکہ کے سوارتھوں کو پورا کرنا ہے. پچھلے چار دشکوں کے دوران امریکہ نے ایران کے خلاف بڑی کٹور کارروائیاں کی ہیں اور بھیانک پابندیاں لگائی ہیں. ایران کے راجدوت نے کہا کہ امریکہ کا پرماڑو ڈیل سے نکل جانا اور ایران پر ایک پکشی روپ سے پابندیاں لگانا سرکشا پریشد کے پرستاؤ 22-31 کا کھلا الگھن ہے. ایران کے خلاف امریکہ کی نیتیاں اور ایک پکشی کارروائیاں بے نتیجہ ثابت ہوئیں, لیکن واشنگٹن اب بھی اپنا یہی غیر قانونی رویہ جاری رکھے ہوئے ہے. اتنا ہی نہیں, بائیڈن کے شاسن کال میں امریکہ ایران کے خلاف ہائبریڈ جنگ آگے بڑھا رہا ہے.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا. سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش. कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा.
भारत नियंत्रित कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर के बारे में केंद्र सरकार की नीतियों को असफल बताते हुए उन पर कड़ी टिप्पणी की है. सिप्ते मोहम्मद हसन की रिपोर्ट.
جموں کشمیر کے بودھ پورو مکھیمنتری اور نیشنل کانفرنس کے اپ ادھیکش عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کو جتنے بڑے وعدے کیے گئے تھے وہ سب جھوٹ ثابت ہوئے. ایک سبق کے بیچ پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو جب یک طرفہ طور پر کشمیر کے وشیش اختیارات ہم سے چھینے گئے تھے تو دیش کے لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ کشمیر میں اب بندوق سماپت ہوگا اور وہاں پر اب بندوق تھامنے والا کوئی نہیں ہوگا. پرنتو اب جموں کے وبھن چھیتروں میں وی ڈی سی کو بندوق دیے جا رہے ہیں, اس سے یہ بات سدھ ہو گئی ہے کہ یہ پرشاسن مکمل طور پر شانتی استھاپت کرنے میں اسفل ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کو دل سے لگانے کی ضرورت ہے, پرنتو ایسا نہیں کیا گیا اور یہاں کے لوگوں کو بہت تنگ کیا جا رہا ہے. پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے انہوں نے کہا کہ الیکشن ہمارا حق ہے, پرنتو ہمیں یہ الیکشن بھی نہیں دیا جا رہا ہے, ہم اس کے لیے بھیک نہیں مانگیں گے. عمر عبداللہ نے کہا کہ لوگوں کا دل جیتنا الگ بات ہے اور لوگوں پر ظلم کرنا الگ بات ہے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے نام پر صرف اور صرف موجودہ رجیم راجنیتی کر رہی ہے اور اس کا لابھ اٹھانے کا بھرپور پریاس کر رہی ہے, پرنتو انہوں نے کہا کہ اب سمے آ گیا ہے کہ دیش کے لوگ اب یہ جاننے لگے ہیں کہ کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے اور جو لوگوں سے کہا جا رہا ہے اس میں سچائی نہیں ہے. اس اوسر پر انہوں نے کہا,
یہ تو مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یہ وہ قبول کر رہے ہیں کہ جو 2019 میں باقی ملک کے ساتھ وعدے ہوئے تھے وہ وعدے ادھورے رہ گئے. 5 اگست 2019 اگر آپ کو یاد ہوگا اس وقت سارے ملک کو یہ کہا گیا تھا کہ کشمیر میں اگر بندوق ہے تو اس کی وجہ 370 ہے، اور 370 جاتے ہی بندوق کا جو ہے اثر کشمیر میں آپ کو دکھنا جو ہے وہ کم ہوگا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ حقیقت نہیں ہے۔ جس طرح کے حملے ہم نے پچھلے دنوں رجوری میں دیکھے، جو وادی کشمیر میں حالات ہیں، جس طرح سیکیورٹی فورسز کے جو نمبر ہیں ان کو بڑھائے جا رہے ہیں، حالات جو ہیں وہ پوری طرح سے ابھی قابو میں نہیں ہیں، اور گورنمنٹ کو جو ہے اس طرح کے اقدامات اٹھانے جو ہیں ان کی مجبوری بن گئی ہے۔ الیکشن ہمارا حق ہے، لیکن ہم اس حق کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں سے بھیک نہیں مانگیں گے، ہم اپنا جھولی نہیں پھیلائیں گے، ہم ہاتھ نہیں جوڑیں گے۔ ان کو دینے ہوں گے ہمیں الیکشن، دے دیں، نہیں دینے ہوں گے نہ دیں، ہم بھکھاری نہیں اور ان الیکشن کے لیے ہم بھیک نہیں مانگیں گے۔
اس بیچ ایک بار پھر سری نگر کی ایتہاسک جامع مسجد کے امام نے پرشاسن سے آہوان کیا ہے کہ وہ میروائز کشمیر کو نماز جمعہ پڑھنے کی انومتی دیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 4 ورشوں کے دوران انہیں کبھی بھی جامع مسجد آنے کی اجازت نہیں دی گئی، جو مانو ادھیکار کا الگھن ہے۔ انہوں نے پرشاسن سے کہا ہے کہ وہ راجنیتا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دھارمک نیتا بھی ہے اور ان پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، لہذا انہیں دھارمک ذمہ داریاں نبھانے کے لیے فوری طور پر اجازت دی جائے۔ سپتی محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
اور اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا کاریکرم سماپت ہوتا ہے۔
دوستو، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا، اور اب پرستوت ہے کاریکرم پتر سنسار۔
پتر سنسار۔ دوستوں، کاریکرم پتر سنسار میں آپ کا سواگت ہے۔ اپنی دیدی مریم مہر دادی
اور بھیا احمد عباس کا سلام سویکار کیجیے۔
شروتاؤ، ہمیں آشا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے سکوشل ہوں گے اور اپنا من پسند کاریکرم سننے کے لیے تیار ہوں گے،
اور آج بھی ہمیشہ کی طرح آپ کے ای میل اور آپ کے کمنٹس، آپ کے اچھے اچھے وچار کاریکرم کی شوبھا بڑھائیں گے۔
جی، تو سب سے پہلے ای میل شروع کر رہے ہیں۔
جی،
گرام جسواڑی، ضلع کھنڈوا، مدھیہ پردیش سے درگیش ناگنپوری کی پوری فیملی، یعنی رادھے شام ناگنپورے، بھاونا، بندو، گولو، کسم بھائی، روی شنکر اور سورج کمار ڈھاک سے، اور نرمدا نگر سے سورج ورما، نیرج، شیمام دھیرج، چنتا ورما بیبی، کنک اور بھاونا ورما۔ ان لوگوں نے سبھی نے 2023 کی نوورش کی ہاردک شبھ کامنائیں بھیجی ہے، اور ایک کچھ پنکتیاں بھی لکھی ہے۔
جی،
لکھتے ہیں کہ نو ورش 2023 کی ہاردک شبھ کامنائیں اور انت بدھائیاں، نئے رنگ کے ساتھ ہو نئی امنگیں، آنکھوں میں الاس نیا، نئے گگن کو چھو لینے کا من میں ہو وشواس نیا، نئے سال میں چلو پرانے موسم کا ہم بدلیں گے رنگ، نئی بہاریں لے کر آئے جیون میں سال نیا، نئے ورش کی ہاردک بدھائیاں۔
بہت بہت آپ کا دھنیواد، اور آپ کو بھی نئے سال کی بہت بہت بدھائیاں۔ اور ان پنکتیوں میں دیدی ایک خاص جذبہ دکھائی دے رہا ہے، خاص اتساہ دکھائی دے رہا ہے، اور یہ پوری طرح سے اس استھتی کو پرستت کر رہا ہے جو نو ورش پہ ہمارے ان شروتاؤں کے من میں پائی جاتی ہے۔ تو ہم آشا کرتے ہیں کہ یہی اسفورتی، یہی ارجا اور یہی الاس بنا رہے نو ورش کے اوسر پر اور اس پورے سال، اور اسی اتساہ کے ذریعے، اسی ارجا کے سہارے اپنے اپنے جیون کے الگ الگ کھیتروں میں بڑی سے بڑی کامیابیاں اور اپلبدھیاں ارجت کریں ہمارے سبھی شروتا اور ہمارے سبھی سہیوگی۔
جی، حیدر اشراوی لکھتے ہیں کہ پارس ٹوڈے چینل وشو میں سب سے اچھا چینل ہے، یہاں سے پرسارت سماچار نشپکش تتھا سچائی پر آدھارت ہوتے ہیں۔
ٹپنی کے لیے بہت بہت دھنیواد۔ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ان آوازوں کو خاص طور پر سامنے لائیں جنہیں مین اسٹریم کا میڈیا دبانے کی کوشش کرتا ہے یا جن کی چھوی الگ طرح سے اور بگاڑ کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اپنے سامراجوادی چشمے سے دیکھتا ہے۔ اور کھیت کی بات یہ ہے کہ چونکہ یہی مین اسٹریم کا میڈیا دنیا کے بہت سارے علاقوں میں سروت اور انفارمیشن کے سروت کے روپ میں استھاپت ہے، اس لیے ان کھیتروں میں بھی جن کی کوئی دربھاونا نہیں ہے سوچنائیں اس طرح سے پہنچتی ہیں، تو مجبوری میں وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں جو سامراجیوادی میڈیا کر رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ تہران سے ہمارا جو نیوز چینل ہے، ہمارے جو ہمارا جو پرسارن ہے، ہمارے الگ الگ جو نیوز چینل ہیں، یعنی یہ بنیادی پالیسی سارے چینلوں کی ہے اور سارے ریڈیو پرسارنوں کی ہے کہ مظلوموں کی آواز کو سامنے لایا جائے، ان کی صحیح پہچان پیش کی جائے، اور پشچمی میڈیا جو کہ پرچارک مادھیم کو ایک طاقت کے ہتھ کنڈے کے روپ میں استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کوشش کو ناکام بنایا جائے۔ تو اب باری ہے سنسکرتی سے جڑی خبر کی، جو دیدی ہر ہفتے کے لیے چن کے اور تیار کر کے لاتی ہیں۔
جی، آج ہم فلموں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پورو امریکی راشٹرپتی باراک اوباما نے شکروار کو ایک وارشک پرمپرا پر ایک بات کہی۔ انہوں نے فلموں سے ہی 2022 کی اپنی پسندیدہ کی سوچی جاری کی۔ ان کی سوچی میں ایرانی سینما کی دو فلمیں شامل ہیں، اصغر فرہادی دوارا نردیشت اے ہیرو اور پرشنسیت ایرانی فلم نرماتا جعفر پناہی کے بیٹے پناہ پناہی دوارا نردیشت ہٹ دا روڈ۔ اوباما نے ٹویٹ کیا، میں آپ سبھی کے ساتھ اپنی پسندیدہ کتابوں، فلموں اور سنگیت کی سوچی ساجھا کرنے کے لیے ہمیشہ اتسک رہتا ہوں۔ میں نے اس سال کچھ بہترین فلمیں دیکھیں، یہاں میری کچھ پسندیدہ فلمیں ہیں۔ اور اس میں انہوں نے اپنے ایران کے تو بارے میں ہم بتا رہے ہیں، جیسے ہٹ دا روڈ اور یہ اے ہیرو۔ جی، تو ان کو یہ بہت ہی اچھا لگا، تو اس کے لیے ہم یہ خبر میں نے اس میں شامل کی ہے۔
اور شوتا باری ہے آپ کے کمنٹس کی۔
مصطفی القاظمی جنرل سلیمانی کی ہتیا میں اپنی بھومیکا کی سزا سے نہیں بچ سکتے، قطعیب حزب اللہ۔ اس پر مصطفی زیدی لکھتے ہیں، عراق کے یودھاؤں کو امریکہ کے ان بھیانک آتنک پدی اپرادھیوں کو اور گینگسٹروں کو کھدیڑنے کے لیے سب سے چتر اور ساہسی طریقے سے کام کرنا چاہیے، جنہوں نے دو شاندار کمانڈروں کی ہتیا کی۔ وہ ابھی بھی عراق پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور اس دیش کو اپنا چرایا ہوا سیریائی تیل بھنڈار بنا لیا ہے۔
یہ کھیت کی بات ہے کہ امریکی عراق میں آج بھی موجود ہیں، اور البتہ ان کی سینک اپستھتی ختم ہو گئی، لیکن انہوں نے کچھ سینک اپنے باقی رکھے ہیں۔ امریکیوں کی سمسیا یہی ہے کہ جہاں بھی رہتے ہیں وہ سکون سے نہیں رہتے، کوئی نہ کوئی وہاں شڈینت رچتے ہیں، کوئی نہ کوئی سازش کرتے ہیں، خود دیش کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کے سنگٹھن بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے جو وہاں کی گورنمنٹ ہے وہ کمزور ہو، وہاں کی اکھنڈتا خطرے میں پڑ جائے، وہاں کی سمپربھتا خطرے میں پڑ جائے۔ عراق کی بات ہے، یہ تو عراق کا پڑوسی دیش حوالہ دیا گیا کہ عراق کا تیل وہ سیریا بھیج رہے ہیں۔ سیریا کا جو دیر الزور کا علاقہ ہے جہاں پر تیل اور گیس کے بھنڈار ہیں، وہ علاقہ امریکن فورسز نے وہاں کی کرد استھانیہ کرد فورس کو اپنے ساتھ ملا کے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور وہاں کا تیل اور گیس امریکن بکوا رہے ہیں سیرین جنتا اور سیرین گورنمنٹ کی اچھا کے وپریت۔ تو اس طرح کی ان کی حرکتیں رہتی ہیں، پھر وہاں سازشیں ہوتی ہیں، وہاں ہتیائیں ہوتی ہیں، اور اس طرح کی گتویدھیاں ہوتی ہیں۔ تو بے شک ضروری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکیوں کی اپستھتی کو ختم کیا جائے، ان کو پیٹ بنانے کا موقع نہ دیا جائے، یہ سب سے مکھی بات ہے۔
جی، شکروار دوپہر سے لاگو ہوا روس کا سنگھرش ویرام، اس پر رفیق لکھتے ہیں، کیا جیلنسکی اتنا گونگا ہے، वो ये नहीं देख रहा है कि प्रतिदिन 400 से अधिक यूक्रेनी सैनिक मर रहे हैं और वो अभी भी सोचता है कि यूक्रेनी सेना रूस की सेना के खिलाफ प्रगति कर रही है। ऐसा लगता है कि उसने सारी विश्वसनीयता खो दी है। यूक्रेनी सेना और लोगों को फिर से विचार करना चाहिए और इससे पहले कि वे अधिक स्लाविक लोगों को मारें, इन सशस्त्र नाजियों को हटा दें।
देखिए, मुख्य बिंदु यही है कि यहाँ पर यूक्रेन के युद्ध में सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि बड़ी साजिशों का निशाना बन गया, उसके जाल में फंस गया यूक्रेन। यूक्रेन जो जंग रूस से लड़ रहा है, इस जंग को लड़ने की शायद उसको ज़रूरत नहीं थी। बेशक इस पे हमले की शुरुआत रूस ने की, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई थी, यानी यूक्रेन ने इस तरह से अपने दरवाजे नेटो के लिए खोल दिए थे कि रूस को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि ये आज अगर उसने जंग ये शुरू नहीं की तो कल उसके ऊपर हमला हो सकता है। बड़ी ताकतों का इस तरह का उनका किरदार रहता है, इस तरह उनका व्यवहार करती हैं बड़ी ताकतें। यूक्रेन के मसले में ये हुआ कि वो नेटो के उकसावे में आ गया, नेटो के चढ़ावे में आ गया। उसे लगा कि वो रूस को इस तरह से टक्कर दे सकता है, लेकिन नतीजा ये हुआ कि पूरा यूक्रेन तबाह होकर रह गया इस साजिश में, इस साजिश का हिस्सा बनने की वजह से। यूक्रेन से और यूक्रेन की सरकार से यहाँ पर एक बड़ी गलती हुई है, और अब भी ये युद्ध जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए वही बेहतर है। और अब बारी है श्रोताओं के विचार सुनने की। हमेशा किसी न किसी श्रोता का चयन करते हैं दीदी, देखते हैं कि इस सप्ताह के लिए किसका चयन किया है दीदी।
जी, ये लखनऊ से हमारी बहुत ही अच्छी श्रोता है समीरा जैदी, तो चलते हैं इनके विचार सुनते हैं।
सबसे पहले हम आपको और जितना श्रोता में हमें सुन रहे सबको हम सलाम कहते हैं, और मैं आपकी हिंदी रेडियो से कुछ साल पहले ज्वाइंट हुई हूँ। मैं आपका प्रोग्राम रोज सुनती हूँ। जिस वक्त इत्तेफाक से मैं आपका प्रोग्राम सुन रही थी उस वक्त ईश्वर चमत्कार आप प्रोग्राम दे रहे थे, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इस वजह से मैं इस प्रोग्राम की वजह से मैं आपके साथ ज्वाइंट हो गई। इससे बहुत सारे व्यूज मेरे क्लियर हुए हैं, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा थैंक्स आपके लिए, इस प्रोग्राम के लिए स्पेशली थैंक्स कहती हूँ। और फिर उसके बाद मैं कुछ टाइम और बैठी तो मैंने सुना उसमें न्यूज आप दे रही थी, मुझे अच्छी चीज लगी आपकी न्यूज लगी, क्योंकि आप जो न्यूज देती हैं वो आप बहुत रियल न्यूज देती हैं। किसी भी तरह की कोई भी आप पार्शलिटी नहीं करती, ना ईरान को ना इंडिया को, किसी भी कंट्री को लेकर नहीं कहती, बहुत अच्छी एकदम रियल न्यूज देती हैं। और आपकी लैंग्वेज भी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि ईरान से मैं हिंदी जबान सुनती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मेरी हिंदी जबान ईरान में भी पहुंच चुकी है। खाली वक्त में जब मैं नहीं सुन पाती हूँ, जब भी अपना काम करती हूँ, तो मैं आपकी साइट भी देखती रहती हूँ साथ ही साथ। और थैंक यू, और इंशाल्लाह मेरी दुआएं आप लोग के साथ हैं कि आप लोग कामयाबी हासिल करिए।
तो दीदी, थोड़ा सा समय हमारे पास बचा है, समीरा जैदी साहिबा का धन्यवाद करते हैं इतने सुंदर विचारों के लिए। एक कमेंट आप और शामिल कर सकते
जी। लड़कियों की शिक्षा पर पाबंदी का आदेश क्या तालिबान शासन के लिए सिरदर्द बन गया है? इस पर मुमताज मतीन लिखती हैं, मुझे आशा है कि ईरान अफगान तालिबान को महिलाओं के लिए वास्तविक समानता की दिशा में प्रभावित करेगा। इस्लाम, जैसा कि पवित्र पैगंबर मोहम्मद द्वारा सिखाया गया है, वास्तविक महिला मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। दुर्भाग्य से देवबंदी विचारधारा उन्हें अंधकार और अज्ञानता की ओर ले जाती है। अल्लाह उन्हें इस्लाम की ओर मार्गदर्शन करे और प्रबुद्ध लोगों को पश्चिमी ईश्वर विरोधी पतन के बिना क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए सशक्त करे।
हम भी आशा करते हैं। इस्लामी गणतंत्र ईरान की जहां तक बात है, ईरान शुरू से इस बात पर तालिबान पर जोर दे रहा है कि तालिबान वहां पर एक व्यापक जनाधार वाली सरकार गठित करें, जिसमें सभी समुदायों और सभी वर्गों की नुमाइंदगी हो, प्रतिनिधित्व हो, और यही वहाँ की समस्याओं का बुनियादी हल भी है। महिलाओं के हिजाब के सिलसिले में, महिलाओं पर जो रोक तालिबान ने लगाई है उस सिलसिले में, इस तरह की और जो दूसरी समस्याएं हैं उनके समाधान के सिलसिले में अगर कोई बुनियादी रास्ता निकल सकता है तो यही है। अगर सरकार इस तरह की व्यापक जनाधार वाली और सभी की नुमाइंदगी वाली बनती है तो निश्चित रूप से उसमें महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा और उनके उनकी समस्याओं को, उनके मुश्किलों को वहाँ पर हल किया जा सकेगा। तो ये एक बुनियादी समाधान है। इस्लामी गणतंत्र ईरान इस पर पहले से जोर देता आया है, इस बार इस समय भी बार बार इस पर ताकीद कर रहा है।
तो भैया अभी हमारे पास समय नहीं है तो हम सिर्फ ईमेल आईडी बता देते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir।
तो श्रोताओं, कार्यक्रम पत्र संसार यहीं पर समाप्त होता है। अगली मुलाकात तक भैया अहमद अब्बास और दीदी मरियम मेहरदादी को अनुमति दीजिए।
खुदा हाफिज।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान की डगर।
विज्ञान की डगर।
दोस्तों, कार्यक्रम विज्ञान की डगर की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया और ईरान में होने वाली प्रगतियों पर चर्चा करेंगे। अख्तर रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, स्विस शोधकर्ताओं ने एक ईरानी वैज्ञानिक के सहयोग से एक हाइड्रोजेल का आविष्कार किया है जिसमें चिपकने की असाधारण क्षमता और मजबूती पाई जाती है तथा मेनिस्कस की मरम्मत में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। चिकित्सा शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि हाइड्रोजेल प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ हृदय की क्षति की मरम्मत कर सकता है और मस्तिष्क के ऊतकों को विकसित कर सकता है और घावों से रक्त स्राव को जल्दी रोक सकता है। इस संबंध में स्विस शोधकर्ताओं ने पैमान कर्मी के सहयोग से एक प्रकार के हाइड्रोजेल का आविष्कार किया है जिसमें असाधारण चिपकने वाले गुण पाए जाते हैं। घुटने की उपासित यानी कार्टिलेज और मेनिस्कस की मरम्मत करते समय ये सुविधा विशेष रूप से प्रभावी होती है। मानव शरीर के अन्य ऊतकों के विपरीत कार्टिलेज और मेनिस्कस में एक सीमित रक्त का भंडार होता है जिसकी वजह से घायल होने पर वो पुनः उत्पन्न नहीं होता। अब तक वैज्ञानिकों ने विभिन्न दवाओं के साथ हाइड्रोजेल पैक का इंजेक्शन लगाकर क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का इलाज किया, लेकिन मानव शरीर की प्राकृतिक यांत्रिक गतिविधियों के कारण इसमें तरल पदार्थ खो गए हैं। लवाजान पॉलीटेक्निकल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का मानना है कि ये एक नई सामग्री इन ऊतकों की मरम्मत कर सकती है। उनके द्वारा बनाए गए हाइड्रोजेल में 90% पानी होता है और इसमें एग्लिनेट से जुड़े पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल डाइमेथ्री क्रिलेट का एक नेटवर्क शामिल होता है जिसे नैनो फैब्रिलेटेड सेल्यूलोज के साथ मिलाया जाता है। ये आविष्कार या ये पदार्थ सक्रिय जैव चिपकने वाले की तुलना में 50 गुना अधिक चिपचिपा होता है क्योंकि इसमें पानी का प्रतिशत अधिक होता है और इसका असर क्षमता मानव शरीर के प्राकृतिक ऊतकों पर समान होती है। इस शोध के वरिष्ठ शोधकर्ताओं के अनुसार ये पदार्थ यांत्रिक ऊर्जा के नेटवर्क में हाइड्रोजेल वितरित करता है, इसीलिए जब सामग्री को कम या ज्यादा किया जाता है तो इसकी चिपकने की क्षमता बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों के एक समूह के नेतृत्व में एक ईरानी शोधकर्ता ने एक बायोसेंसर का आविष्कार किया है जो बहुत कम समय में हानिकारक बैक्टीरिया की उपस्थिति के लिए रोगियों के प्रयोगशाला नमूने का विश्लेषण कर सकता है। वर्तमान समय में रोगियों के जैविक नमूनों में हानिकारक बैक्टीरिया का पता लगाने में आमतौर से 2 से 5 दिन लगते हैं और इस अवधि के दौरान उसके शरीर में किसी भी संक्रमण के बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इस संबंध में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक सहायक प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन जरीफी ने शोधकर्ताओं के एक समूह का नेतृत्व किया और कैलगरी विश्वविद्यालय के सहयोग से एक बायोसेंसर का आविष्कार किया जो तुरंत मौके पर नमूनों की जांच कर सकता है। दोस्तों, फिलहाल इस सेंसर का प्रोटोटाइप छोटा और सस्ता है। ये उपकरण जैविक द्रव के नमूनों में 2.5 गीगाहर्ट्ज माइक्रोवेव संकेतों को इंजेक्ट करता है। रेजोनेंस की व्यापकता और सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन का विश्लेषण करके सेंसर किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया की पहचान कर सकता है और नमूने में इसकी एकाग्रता का निर्धारण कर सकता है। ये सेंसर जब ई कोली बैक्टीरिया के विभिन्न सांद्रता वाले तरल नमूनों पर परीक्षण किया गया तो बैक्टीरिया की मात्रा का लगभग तुरंत और कम समय में सटीक रीडिंग हासिल हो गई। ये शोध नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुआ है। हालिया दशकों में हड्डी प्रत्यारोपण के उत्पादन के क्षेत्र में सभी प्रकार की धातुओं और मिश्रित धातुओं की दक्षता सिद्ध हुई है। हालांकि नए मिश्रित धातुओं पर अनुसंधान जितना संभव हो सके उनके गुणों को अनुकूलित करना जारी रखता है। अहवास के शहीद चमरान विश्वविद्यालय, शुश्तर के आज़ाद इस्लामी विश्वविद्यालय और तेहरान के मालिक अश्तर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने निकल टाइटेनियम मिश्र धातु पर जैव सक्रिय कोटिंग को सफलतापूर्वक लागू किया। इस लेप को लगाने से इस मिश्र धातु के जैविक गुणों में सुधार हुआ। इस परियोजना के शोधकर्ताओं के अनुसार निकल टाइटेनियम मेमोरी मिश्र धातुओं को हड्डी के ऊतकों को सही और मजबूत करने, उनके अद्वितीय गुणों के कारण आर्थोपेडिक और दंत प्रत्यारोपण के साथ साथ कृत्रिम जोड़ों के निर्माण क्षेत्रों में बहुत प्रयोग किया गया, लेकिन इन सकारात्मक विशेषताओं के बावजूद इन मिश्रित धातुओं की बड़ी समस्या अर्थात जहरीले निकल आयनों की उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शरीर के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने के अलावा निकल हड्डी की कोशिका प्रसार की दर को कम करता है और बाद में हड्डी की मरम्मत की गति को कम करता है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस परियोजना में निकल टाइटेनियम मिश्र धातु पर बायो एक्टिव नैनो कोटिंग लगाकर शरीर के वातावरण में निकल की रिहाई दर को कम करने और जीवन को बढ़ाने के अलावा मिश्र धातु की सतह के जैविक गुणों में सुधार करने में सफलता हासिल हुई। इस शोध के परिणाम 2018 में सिरेमिक्स इंटरनेशनल पत्रिका में प्रकाशित हुई है। दोस्तों, खगोल विदों ने वायुमंडल में एक जल ग्रह की खोज की है जो पृथ्वी से 179 प्रकाश वर्ष दूर एक प्रणाली में स्थित है। इस प्रणाली के केंद्र में स्थित तारे को HR 879 कहा जाता है और इसके ग्रह HR 8799 BCD हैं। हवाई में किक वेधशाला के शोधकर्ताओं ने HR 8799 C बृहस्पति आकार के 7 गुना ग्रह की जांच करते हुए ये खोज की। HR 8799 C तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रहों में से एक है। यह प्रणाली नक्षत्र पेगासस में स्थित है। विशेष उपकरणों का उपयोग करते हुए खगोलविदों ने ग्रह के वायुमंडल में पानी की उपस्थिति और मीथेन की अनुपस्थिति की पुष्टि की है। मलेशियाई शोधकर्ताओं ने डिजिटल गंध का आविष्कार करने में सफलता हासिल की है। डिजिटल गंध तकनीक का मतलब है कि निकट भविष्य में लोग SMS द्वारा एक दूसरे को विभिन्न प्रकार की गंध भेज सकते हैं। इन शोधकर्ताओं ने पहली इलेक्ट्रिक फ्रूटी, वुडी और मिंट गंध का आविष्कार करने का दावा किया है जो व्यक्ति की नाक के अंदर एक इलेक्ट्रोड लगा कर किया जाता है। ये इलेक्ट्रोड नाक में कमजोर विद्युत धाराओं को उत्तेजित करता है। ये धाराएं उन तंत्रिकाओं को सक्रिय करती हैं जो मस्तिष्क को अलग अलग गंध पहुंचाती हैं। इंस्ट्रोस्टे इंजीनियरिंग मलेशिया नामक कंपनी के निदेशक के अनुसार यह प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा है। उदाहरण के लिए ये विधि किसी व्यक्ति को इंटरनेट के माध्यम से और वस्तुतः अपने मित्र के साथ रात्रि भोज करने में सहायता करती है जिसमें उपयोगकर्ता दूसरे को 3D में देख सकता है। शोधकर्ताओं ने अध्ययन में 31 प्रतिभागियों के लिए 10 अलग अलग गंध बनाई। इस संस्थान के निदेशक का मानना है कि आने वाले समय में इंटरनेट पर डिजिटल रूप से गंध भेजी जाएगी, लेकिन ये तकनीक संभवतः कुछ दशकों में तैयार हो पाएगी। शोधकर्ताओं के अनुसार अगला कदम अधिक नियंत्रित तरीके से गंध पैदा करना है और ये प्रक्रिया लोगों को ऐसे सॉफ्टवेयर और उत्पाद बनाने की अनुमति देती है जो बिजली से गंध पैदा करती है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें इजाजत दीजिए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और अब समय हो चुका है आज के मुख्य समाचारों के सारांश का। ईरान का कहना है कि वो लेबनान का हमेशा वफादार दोस्त रहेगा। तेहरान ने कहा है कि अमरीका की गैर कानूनी कार्रवाइयां संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के खिलाफ हैं। हमास ने तुर्की और अजरबैजान गणराज्य की निंदा की है और भारत में मंदिर में घुसने पर दलित युवा की पूरी रात पिटाई हुई है। तो दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा ये प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। तो इसी के साथ अख्तर अब्बास और साथियों को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। Thank you.